मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 14 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैंने जिस विषय की शुरुआत शुक्रवार को की थी, आज मैं उसका समापन करूंगा। इस रूप में आप आज के इस विषय को शीर्षक दे सकते हैं, किसानों के लिए कुछ सुझाव। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा कोविड से, जो हम लगातार सोमवार को करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि स्थितियां लगातार हमारे देश की बेहतर होती चली जा रही हैं। स्वस्थ होने की दर 94.93% पहुंच गई, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि जो मृत्यु दर है वो अभी तक 1.45 ही बनी हुई है और इसमें बहुत ज्यादा अंतर आना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर स्वस्थ होने की दर बहुत बेहतर होती चली जा रही है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इस बीच में आपने देखा होगा कि जो रोजाना संक्रमित जो पेशेंट मिलते थे उनमें भी तेजी से गिरावट आती चली जा रही है। कहां तो हम सोच करके देखे कि 95,000 पर डे तक पहुंच गए थे और अब गिर करके 30-35 हजार के करीब आ गए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। अब इस सर्वेक्षण में एक और भी महत्वपूर्ण बात पता लगी है और वो ये है कि हमारे यहां जब कि लगभग 54% पुरुषों में एंटीबॉडीज डेवलप पाई गई, मतलब उन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया, और महिलाएं लगभग 55% हैं। अगर बहुत वाइड रेंज में देखें तो 40-60% के रेंज में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। और अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो सीधी सी बात है कि अब हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कह रहे थे कि विंटर में शायद खतरा और ज्यादा बढ़ जाए, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपको इसके प्रति बहुत ही अब सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, जिसकी वकालत मैं शुरू से ही करता रहा हूं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। फ्रेंड्स, एक छोटी सी खबर है अखबारों में और वो है कि फ्रांस में आंदोलन हो रहे हैं और फ्रांस में अभी एक सुरक्षा बिल पारित किया गया है, उसके विरुद्ध ही आंदोलन हो रहा है। उस सुरक्षा बिल में ये व्यवस्था की गई है कि जो प्रेस है या कोई भी जो व्यक्ति है वो बेसिकली जैसे पुलिस कर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उनकी फोटो नहीं ले सकता, उनके वीडियो नहीं बना सकता, उनके जो चित्र लिए जाएंगे, उनकी जो फोटो ली जाएगी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस पर यह बिल पारित किया गया था तो उसका विरोध किया जा रहा है और विरोध करने वालों में प्रेस के लोग ज्यादा हैं और स्वाभाविक है, इसे प्रेस की अभिव्यक्ति पर लगाए जाने वाला अंकुश माना जा रहा है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखिए, आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई फ्रांस की इस घटना की चर्चा सर ने क्यों की, क्या ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है? दोस्तों, दरअसल जो मैं आपको कहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। अगर आप 2-3 साल पहले के मेंस का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, कुछ इस तरीके का है कि फ्रांस भारत की पंथ निरपेक्षता से क्या सीख सकता है। बस छोटा सा प्रश्न है। अब आपको लगेगा कि तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फ्रांस का संविधान भी पढ़ना है, ब्रिटेन का भी पढ़ना है, अमेरिका का भी पढ़ना है, रशिया का भी पढ़ना है। ये दिमाग में बात आती है और यही हम भटक जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति तक हमें पहुंचा देता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात भरी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। मेरे पास मेल आते हैं कि सर वो तो इतना बता रहे हैं, आप तो इतना ही बताते हैं तो फिर हमें तो कम लगता है। भैया, ज्यादा बता देना सबसे आसान काम होता है। दे दो जितना। जब आएगा तो हम कह देंगे कि भैया देखो, हमने तो बताया था, अब तुमने नहीं लिया तो हम क्या करें, नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। लेकिन क्या सच में व्यावहारिक दृष्टि से वो हमारे लिए संभव होता है? यहीं पर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं हमारी मदद करते हैं। 2-3 साल पहले जो ये प्रश्न आया था फ्रांस से रिलेटेड, उस समय फ्रांस ने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें थी कि जैसे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पगड़ी नहीं लगा बांध सकते, अपने पास कटार नहीं रख सकते, तो इस तरह के का कानून बनाया गया था। तो अब आप देखिए, सीधे सीधे पंथ निरपेक्षता, भारत में इस तरह के प्रतिबंध नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भारत से फ्रांस क्या सीख सकता है। अब चूंकि अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने की बात आई है इस सुरक्षा बिल से, तो इसी दृष्टि से मैंने यह बात आपके सामने रखी है, इस घटना की चर्चा की है। मैं कारण आपको बता रहा हूं ताकि तार्किक रूप से आप अपने को धीरे धीरे विकसित कर सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं शेखर गुप्ता जी का, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। आपको ध्यान है कि हम लोग बात करें कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र, भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र। आप लोग वो आर्टिकल पढ़िएगा, पढ़ने के बाद बेहतर होगा कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको उन्हें नोट भी कर लीजिए, करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। हो सकता है कि इस पर आधारित कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप क्या समझते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए लोकतंत्र अच्छा है या बेकार है, या लोकतंत्र में विकास ज्यादा होता है या तानाशाही तंत्र में विकास ज्यादा होता है। इस तरह के प्रश्न, समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आप सब अपने अपनी तरफ से नोट कर लें, यदि संभव हो सका तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन चूंकि आज समय की बहुत कमी है तो फिलहाल मैं उसके बारे में चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। फ्रेंड्स, आइए अब हम सीधे सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब लॉर्ड मेयो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे, या कह लीजिए वायस राय थे, उस समय एक ICS अफसर थे इंपीरियल सिविल सर्विस के, A.O. Hume, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उनको एक दायित्व सौंपा गया था कि आप किसानों की स्थिति के बारे में पता कीजिए। अब आप देखिए कि मैंने सिंपल सी ये बात कह दी, लेकिन अगर आप A.O. Hume के बारे में कुछ थोड़ी सी कुछ और बातें भी जानते हैं तो ये जो बड़ा रूखा सा फैक्ट है ये थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए चिकनाहट लिए हुए बन जाता है। A.O. Hume, उत्तर प्रदेश वालों को जानकर के ये खुशी होगी कि वो जो इटावा है वहां के बकायदे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे इटावा के, स्टेट सिविल सर्विस से थे, बाद में ICS हो गए थे। और 1971 में देखिए जो लॉर्ड मेयो हैं उनका कार्यकाल अब आपको देख लेना चाहिए, उनका कार्यकाल भारत में रहा है 1869 से 1872, ये उनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो 1971 में मैं आपको बता रहा हूं कि जो A.O. Hume थे वो सेक्रेटरी थे राजस्व विभाग के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर के और कॉमर्स के। तो चूंकि वो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे तो मेयो साहब ने उनको सौंप दिया कि भाई तुम किसान के हालतों पर एक रिपोर्ट लिखो, थोड़ा सा जायजा लो, मुझे रिपोर्ट दो। तो A.O. Hume ने वो किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट की मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं। A.O. Hume की एक और खासियत थी, एक दो खासियत थी। 1857 का जब स्वतंत्रता आंदोलन इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और इटावा में जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो इटावा उन जिलों में था जहां स्थिति बहुत जल्दी सामान्य बहाल हो गई थी। फिर उन्होंने बकायदे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक रिपोर्ट तैयार किया था और बकायदे फिर उस रिपोर्ट उस आधार को हमारे देश के जो दूसरे जिले थे उनमें भी लागू किया गया। तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है A.O. Hume का। खैर मित्र, लॉर्ड मेयो जो थे, देखिए जहां भी लॉर्ड लगाया जाएगा, क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ब्रिटेन के संदर्भ में तो आपको लॉर्ड शब्द पढ़ने को मिलेगा, तो जहां लॉर्ड लगाया जाता है आप समझ लीजिए कि ये ब्रिटेन के जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे आप कहते हैं, जो हमारे यहां की राज्यसभा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके मेंबर है। चूंकि उसके मेंबर है तो लॉर्ड कहा ही जाता है, तो लॉर्ड मेयो इसका मतलब हुआ कि वो हाउस ऑफ जो लॉर्ड है उसके सदस्य थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक होमवर्क दे रहा हूं कि जो लॉर्ड मेयो थे 1869 से 1872 तक रहे, और इनकी एज भी उस समय ज्यादा नहीं थी, 46-47 साल की उम्र में ही वो भारत के वायसराय बनकर के आ गए थे। तो इसके बाद ये क्या हुआ, इनकी अकाल मृत्यु हुई या इनकी हत्या की गई या इनका कार्यकाल पूरा हो गया भारत से चले गए या इनको बीच में ही हटा करके भेज दिया गया, क्योंकि जब आपकी जब सरकार से नहीं पड़ती या सरकार की इच्छाओं के अनुरूप आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको हटा भी दिया जाता है। तो इसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि चार विकल्प मैंने दिए हैं कि लॉर्ड मेयो के साथ क्या हुआ होगा। खैर तो दोस्तों, ये बातें मैंने जानबूझ कर आपको बताई है, मैं गप नहीं कर रहा हूं, मैं कहानी किससे आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं इतिहास को समझने और पढ़ने के तरीके बता रहा हूं कि जब हम इस तरह की चीजों को इतिहास में शामिल कर लेते हैं तो इतिहास हमारे लिए रोचक हो जाता है, बहुत लंबे समय तक याद रहता है और सही मायने में हम इतिहास को समझ पाते हैं, और यही हमारे अंदर रियल में एनालिटिकल पावर डेवलप करता है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी उसके मुख्य पॉइंट देखिए, और ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनका उपयोग आप अभी भी कर सकते हैं कि भारत में किसानों की स्थिति में किस तरीके से सुधार होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, आप उपाय सुझाएं तो आप इनमें से डाल सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या उपाय बताए। उन्होंने कहा कि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बहुत योग्य जो अधिकारी हैं और सलाहकार हैं उनको चाहिए कि वो दफ्तरों से निकल करके किसानों के बीच में जाएं, उनके साथ रहें, देखें और रोजाना 10-10 घंटे उनके साथ बिताएं और वो 10 साल तक एक ही क्षेत्र में रहें, उसी एरिया में उनका अपॉइंटमेंट हो, वहीं वो काम करते रहें, और वहां जाकर के किसानों से बातचीत करने के बाद वहां की समस्याओं का निदान करें। ये उन्होंने सलाह दी। फिर उन्होंने कहा कि बकायदे हमारे जगह जगह पर एग्रीकल्चर के कॉलेज खोले जाने चाहिए, एग्रीकल्चर के कॉलेज खोले जाने चाहिए। लॉ के कॉलेज ठीक है आप खोलते रहिए, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की जरूरत है, और किसानों से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो सीखें और वैज्ञानिकों से किसान सीखें, यानी कि टू वे ट्रैफिक हो, लेन देन का मामला है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिख लिए हैं वो समझे कि भैया हम सब कुछ जानते हैं और हमारे किसान कुछ नहीं जानते, क्योंकि इसी रिपोर्ट के एक दूसरे भाग में वो ह्यूम ने लिखा था कि हमारे जो किसान हैं इतने ज्यादा पारंगत है अपनी खेती के काम में कि वो जानते हैं कि कौन सी फसल कब बोई जाए, कहाँ बोई जाए, कितनी बोई जाए, इन सब में उनको महारत हासिल है। यहाँ तक कि मौसम के भविष्य के बारे में वो पारंगत हैं, आंधी तूफान ओलावृष्टि तक का उन्हें बोध है, कौन से पौधे को कितने समय तक रखें, उनको फसलों के पकने का ज्ञान है। और उन्होंने कहा था कि मुझे तो उनके इस ज्ञान पर आश्चर्य होता है, मैंने दुनिया में इतने अनुभवी किसान नहीं देखे जितने अनुभवी भारत के किसान हैं। सोच करके देखिए, तो ऐसे किसानों से वैज्ञानिक भी सीखें, अफसर भी सीखें। फिर उन्होंने कहा कि किसानों को उद्योग, विज्ञान और कला से भी जोड़ें। स्किल डेवलपमेंट में कहते हैं उन्होंने उद्योगों से भी जोड़ें। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उनके उत्पादों का प्रदर्शन करें, खेतों को उद्योगों से जोड़ें, उन्हें रोजाना मौसम की जानकारी दी जाए और गांव गांव में बॉटनिकल गार्डन तैयार करें। हमारे यहाँ बॉटनिकल गार्डन आप जाकर के देखिए तो बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, तो है ना, वो पर्यटन के स्थान बन जाते हैं। उन्होंने कहा गांव गांव में जाकर के बॉटनिकल गार्डन तैयार करिए। भारत में लॉ, शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय से भी अधिक जरूरी कृषि संस्थान हैं, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट खोले जाएं जो किसानों की मदद कर सकें, और बकायदे स्कूलों में जो एग्रीकल्चर होती है, जो बॉटनी है, एग्रोकेमिस्ट्री है, वेजिटेबल फिजियोलॉजी है और जियोलॉजी है, इनके विषय पढ़ाए जाएं, स्कूलों में पढ़ाए जाएं। आप देखिए कि रोजगार परक शिक्षा की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रैक्टिकल शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ वो कृषि के प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सजेशन उन्होंने दिए थे, मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कुछ सजेशंस आप नोट कर सकते हैं और आगे चलकर के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सजेशन ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक आपको काम आते रहेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो मेल मिला है वंदना गौर जी का और उनकी बेटी सौम्या गौर का, जो हमारे क्लास की स्टूडेंट भी रही हैं, वंदना जी आपने एकेडमी के प्रति और मेरे प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी तरह का आभार सौम्या आपके प्रति भी। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं चंदन सिंह कंवर, विपेंद्र सिंह, संध्या वर्मा और अर्शदीप शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।